आयत नंबर 43 को देखते हैं, अलम तर, क्या तुमने नहीं देखा। इससे क्या मुराद होता है? गौर से देखो। देखने में क्वेश्चन है लेकिन इसमें रग़बत दिलाई जाती है, क्या तुमने नहीं देखा। अन्नल्लाह युसजी सहाबन, कि अल्लाह हांक कर लाता है बादलों को, यानी अल्लाह की जात बादलों को इधर से उधर उधर से उधर लेकर आती है। कभी जहाज में सफर करते वक्त विंडो से देखा हो तो आप इस आयत को बहुत इंजॉय करेंगे। कैसे समंदर के ऊपर बुहारात बनते हैं, फिर बुहारात ऊपर जाके बादल बनते हैं, फिर हवाएं चलती हैं, हजारों मील का सफर तय करके कहीं से कहीं मिल जाती हैं। अब जब समंदर पे बादल खड़ा होता है तो वो तो बहुत थोड़ा सा होता है ना, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जब अल्लाह सुबहान तआला की कुदरत होती है उसको जोड़ने की, तो क्या करता है, थुम्म युअल्लिफु बैनहु, फिर वो उनको जोड़ देता है आपस में। युअल्लिफु का लफ्ज अल्लफ युअल्लिफु से है, जिससे लफ्ज उल्फत भी है। गम होती है ना, जिसको आप कहते हैं स्टिकी गम या एल्फी कह लीजिए, या दो चीजों को जोड़ने वाली, वो चीज है उल्फत। यानी उल्फत दिलों को जोड़ती है। बादल छोटी छोटी टुकड़ियों में होते हैं, फिर अल्लाह उनको जोड़ता है। एक तेज चल रहा था तो हवा हल्की होती है, वो जरा हल्का होता है, पीछे वाले बादल को अल्लाह हवा को जरा सा तेज करके दोनों को जोड़ता है। सुम्म यजअलुहु रुकामा, फिर इनको तह बतह कर देता है। कैसे लेयर्स लगी होती हैं हवाई सफर में, आप देखते हैं कि बादलों की तहें होती हैं। कभी बादल आपसे ऊपर होते हैं, फिर आप बादलों के अंदर से जब गुजरते हैं जहाज में, तो क्या फील हो रहा होता है? मुझे तो ऐसे लगता है मेरी रूह ऊपर जा रही है, और ऐसे ही जाएगी। एक वक्त आएगा इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला आसानी का मामला हमारे साथ कर दे। फिर इसी तरह आप देखिए, एक वक्त आता है आप जहाज से नीचे देखते हैं तो ऐसे लगता है कि दूध के ऊपर की सारी ही झाग है, और वो इतने बड़े बड़े बादल होते हैं। फिर जब जहाज वापस आता है तो भी यही कैफियत होती है। अल्लाह ताला कहते हैं फतरुल वद्क यखरुजु मिन खिलालिही, तो तुम देखते हो कि बारिश इनके दरमियान में से बरसती पड़ती है। पहले क्या था, सबसे बुखारात थे, फिर उसके बाद उसके अंदर से बादल बने, फिर आसमान पे गए, फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने उसको, ये जो सहाबा ने, साहिबा कहते हैं बादल को, यानी इनको अल्लाह ताला किस तरह से हांकता हुआ ले जाता है। और युसजी इस जाउन से है, जैसे हांकना नहीं होता, जानवर को हांका जाता है। हवा जो होती है ना, वो एक किस्म की चाबुक का काम करती है, चलो आगे, बादलों को रुकने ही नहीं देती, चलती जाती है। मनो टनो पानी को यूं उठाकर हवाएं ले जाती हैं, फिर तह बतह होती हैं, और आप देखते हैं कि जब वो सारे क्लाउड इकट्ठे होते हैं, एकदम उसमें से वदक बारिश निकलते हैं, मी बरसता है। वदक बारिश, सख्त बारिश को कहते हैं। यखरुज मिन खिलालिही, उनके अंदर से बरसती है। ना वहां छलनी है कि उसमें से छन छन के पानी का एक एक कतरा आए, ना ऊपर कोई पानी की टूटियां लगी हुई हैं। कहां से उन क्लाउड्स में से पानी आ जाता है? वयुनज़्ज़िलु मिनस्समाई मिन जिबालिन फीहा मिन बर्द, और अल्लाह आसमान से इसके अंदर के पहाड़ों से ओले बरसाता है। यानी जब बारिश जमा हो जाती है तो बास दफा बारिश ओलों की शक्ल में बदल जाती है। ये जो बर्द है ना, ये ओलों के लिए आता है। मिन जिबाल, जिबाल का लफ्ज यहां बादल के लिए, यानी ऐसे पहाड़ बने होते हैं बादलों के, और मुझे तो ऐसे बाजों का दिखता है जैसे मोतियों के गुच्छे, और खास तौर पर जब सूरज भी पीछे से पड़ रहा हो, छन छन करती हुई चीजें। आज भी वो मंजर आंखों के सामने है, अल्लाह जाने वो मंजर कभी दोबारा दिखेगा कि नहीं, कि जहाज इस तरह से मारा था ऊपर कि कहीं से सूरज उन बादलों के ऊपर पड़ रहा था, और मैं अपने ध्यान थी और बाहर जब नजर पड़ी तो एकदम, जिस तरह कहते हैं ना कि चीख निकलने वाली कैफियत थी, मुझे फील हुआ कि गोल गोल पर्ल्स के गुच्छे हैं, मोती लग रहे थे, बिल्कुल बादल नहीं लगे। बादल तो यूं फैले होते हैं ना, वो यूं गुच्छे थे, गुच्छे पे गुच्छा, और उसमें से जो छन छन करती हुई रोशनी थी, एकदम मैं हिल गई। मेरे साथ जो थे, मैंने उनको इशारा किया, मैंने कहा देखें, तो उन्होंने फिर यही पढ़ा कि अल्लाह नूर समावाती वल अर्ध। बिलीव मी, इतने साल पुरानी ये बात है, आज भी मेरी ख्वाहिश है कि अगर मुझे फिर कभी अल्लाह दिखाए तो मैं ये मंजर देखूं। गौर करेंगे तो पता चलेगा कि थे बादल लेकिन गुच्छों की शक्ल में थे, सूरज की रोशनी उन पे ऐसे पड़ रही थी जैसे रिफ्लेक्ट हो रही थी, पानी होता है ना अंदर, तो वो रिफ्लेक्शन में यूं उसमें से रोशनी की तहें थी कि इंसान इमेजिन नहीं कर सकता दुनिया का कोई बल्ब ऐसा हो। और दूधिया कलर के मोती, अल्लाह कहता ये कौन करता है ये बताओ। चलिए, बादल तो बरसे, फयुसीब बिही मैं यशाउ, तो वो पहुंचाता है इन बादलों को जिस पर चाहता है। वह यसरीफ़ु अला मन यशा, और इसका रुख फेर देता है जिससे चाहता है। अब ये अल्लाह की शान है, जिसकी खेती को बर्बाद करना मकसूद होता है अल्लाह वहां ओले बरसा देता है। ओले पड़े वो सारी खेती बर्बाद हो गई, रातों रात सारी फसल खत्म हो गई। और जिससे अल्लाह का दिल चाहता है, अल्लाह नहीं चाहते अभी उससे रुख फेर देता है। बाज़ दफ़ा पता चलता है एक खेत ओलों से बर्बाद हो गया, दूसरा खेत बिल्कुल करीब रहा, ठीक रहा। बाज़ दफ़ा बारिश एक जगह हो जाती है छन छन करती हुई, तो वहां फसल उगाती है, दूसरा खेत खुश्क रहता है। यकादु सना बर्की ही, करीब है कि इसकी बिजली की कूंद, यस्खबु बिल अबसार, लोगों की आंखों को उचक ले जाए। यानी यही बादल, अब आप देखिए कि मल्टीपर्पज थिंग है इसके अंदर, वही बादल खैर भी देता है और वही बादल शर भी देता है, वही बादल लोगों के लिए खुशी का पैगाम भी लाता है, वही नुकसान का सामान भी बनता है। हमारे लिए इसमें क्या सबक है? हमारे लिए इसमें सबक है टीम वर्क का। अकेला एक अकेला 2 11, बस जब हम एक बहुत नेगेटिव जुमला बोलते हैं और इतना नेगेटिव के अंदर से खून जल जाए सुनने वाले का, और वो ये कुछ नहीं करेंगे, हमसे नहीं कुछ होगा, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती। और अगर कोई करे, कहते जी आपके इस करने से क्या होगा, अपनी जिंदगी से इस लफ्ज को डिलीट कर दें कि मैं कुछ नहीं कर सकती। पीछे बढ़ा के बहुत बड़ा चिराग ना भी जले तो छोटे छोटे चिराग जला दीजिए। बारिश का हर कतरा अगर ये सोचे कि मेरे एक छोटे से कतरे से क्या होगा, तो क्या इंसानियत को बारिश मिले? इतने छोटे छोटे कतरे मिलकर इंसानियत को नफा देते हैं। तो लकद खलकना अल इंसान फी अहसनी तकवीम, आसन तकवीन पे पैदा किया हुआ इंसान किसी को फायदा नहीं दे सकता। जितनी अल्लाह ताला ने आपको खूबियां दी हैं, जितनी नेमतें आपको दी है, क्या बादलों को दी हैं, परिंदों को दी हैं? जब वो पानी के फीके कतरे इंसानियत को बारिश दे रहे, तो मैं और आप क्यों नहीं दे सकते? क्यों नहीं दे रहे? वजह यह कि इज्तमाईयत नहीं है। बादलों में इज्तमाईयत का सबक है, युअल्लिफु, और जो चीज बंदे को जोड़ती है वो उल्फत है, वो मोहब्बत है। जितना आपका दिल अपने साथियों से जुड़ा होगा, कोई किसी की बुराई करनी तो दूर की बात है, सुन भी नहीं सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं उसकी बात सुनूं, तब देखिए कि खैर भड़कती है। और ये चीज मैंने अपनी आंखों से देखी है, जिस टीम में और जिन साथियों के दिल आपस में जुड़े होते हैं, जो एक दूसरे की तकलीफों को कह लीजिए या ऐबों को छुपाते हैं, उनकी मदद करते हैं, उछालते नहीं हैं, वहां से बहुत खैर निकलती। कोई खूबी भी ना होना, अल्लाह उन लोगों से कोई काम ले ही लेता है। वजह यह कि उनके दिल जुड़े हुए हैं। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल सहाबे करम है, रुहमाउ बैनहुम, इज्जतुल काफिरीन, अशिद्दा उलल कुफार। सूरत मायदा और सूरत फतह को जमा कर लें, आपको सहाबा का किरदार खूबसूरत तौर पे अपने सामने नजर आएगा, कैसे अल्लाह ताला ने उनके दिल जोड़े हुए थे। कोई उनकी बात नहीं कर सकता। हजरत मुआविया और हजरत अली दो बड़े सहाबी थे, एक मौके पे इनकी जंग भी हुई, बहुत मारूफ जंग है, कि जिस मौके पे किसी शख्स ने हजरत मुआविया को खत लिखा कि तुम कहो तो अली के खिलाफ फौजें भेजूं, तो उसने फौरन खड़े होकर कहा कि देखो ये हमारा सियासी मसला है, अगर तुमने अली के खिलाफ बात की तो सबसे पहले तुम्हारा मुकाबला मैं करने आऊंगा। हजरत अली और हजरत मुआविया, जिनके नाम पे आज फिरके बन गए, वो आपस में एक दूसरे को कहा करते थे कि उम्मीद है कि हमारे दिल जो हैं ये आराफ के मुकाम पे साफ किए जाएंगे और हमारे दिलों से गिल और कजी निकाल दी जाएगी। ये उनकी मोहब्बत थी। जिस घर के घर वाले ही लड़ते रहे, वो एक दूसरे की लेग पुलिंग करते रहे, वहां मेहमान आएगा तो उसको खुशी होगी, वहां के कामों में बरकत होगी। तो दिल जुड़ने ये असल काम है, और अल्लाह के नबी ने ये काम आसान दर्जे पे किया था, लोगों के दिलों को जोड़ा। और दिल कब जुड़ते हैं, याद रखिए गोल एक होता है, सेम गोल। आप फुटबॉल को जेहन में रखिए, फुटबॉल का मैच होता है, 8-10 खिलाड़ी अगर हैं, सब एक बॉल के पीछे भाग रहे हैं ना, तो आप देखिए कि सब एक ही तरफ जा रहे हैं ना। आप एक की जगह दो बॉल फेंक देंगे वहां, तो क्या वो टीम जुड़ी रहेगी? पता ही नहीं चलेगा असल बोल कौन सा है। रास्ते फर्क है। आज मुसलमान मुख्तलिफ फोरम से काम करते हैं, मुख्तलिफ नामों से करते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है। गोल एक हो, और गोल क्या हो, दीन कुल्ली, इस दीन इस्लाम को दुनिया पे छा जाए। आप किसी रंग में इस्लाम की खिदमत करते हैं, 100 दफा कीजिए, दिल जुड़े रहें। आज हमें दुश्मनों ने इस तरह तोड़ दिया कि ऊपर से तो 4 फिरकों में कटे, नीचे आके 40 फिरके बन गए, एक एक कटने की बातें। तो जब तक इज्तमाईयत नहीं होगी, फायदा नहीं होगा, खैर नहीं होगी। वही बारिश है, देखिए कतरे कतरे होते हैं, लेकिन जब वो एक खास टेम्परेचर से बढ़ जाते हैं, वो पत्थर बन जाते हैं, हेल हो जाते हैं, फिर वो पत्थरों की बारिश हो जाती है। यहां से इंतहा पसंदी से भी बचाया गया। ओले इस वक्त यहां मिसाल है कि जब मुसलमानों में इंतहा पसंदी आती है, एक्सट्रीमिस्ट, दीन के हुक्म पे इतने एक्सट्रीम, और आपको पता है कि ये जो खारजाइज थे, जिनको खारजी हम कहते हैं, ये इंतहा पसंद लोग थे। हजरत अली के साथ जोड़ने वाले अपने आप को शियाने अली के नाम पे लोग कौन थे? हद से बड़े हुए थे। तो हद से बड़ा हुआ तकवा भी नुकसानदेह होता है। खुद को नेक समझना, बाकी सबको आग में, सब आग में, मैं नेकी पे, ये नहीं हो सकता। और अपोजिट भी ठीक नहीं है, हर गुनाहगार को कहना पता नहीं वो कितना नेक है, ये फासिक तुम्हें क्या पता कैसी है, हो सकता है ये जन्नत में पहुंचे, अल्लाह ले जाए उसकी मर्जी है। तो याद रखिए, नेकी का वो मियार अल्लाह ने नहीं रखा कि जो नामुमकिन हो, सिर्फ दो चार लोग माशरे के वहां पहुंच जाए और बाकी सब नाकाम। अल्लाह ने मॉडरेट रिलीजन दिया है। हमारे यहाँ दो एक्सट्रीम्स हैं, नमाज रोजे को दीन से निकाल दो, सूद जायज कर लो, शराब खैर है आज के दौर में होनी है, और दूसरा ऑपोजिट सिर्फ नमाजें ही पढ़ते रहो और सिर्फ बस तुम यही करो और अल्लाह अल्लाह करो। इस्लाम दोनों में देखिए, रात और दिन, आना और जाना क्या सिखाता है? बी मॉडरेट। रात के बाद सुबह, सुबह के बाद रात, बीच में कितने मरहले आते हैं। उरूज और जवाल दुनिया है, खेल है। नबी सल्लम के बाद जब मुसलमानों में से ये बैलेंस चला गया तो बिगड़ गए। अभी मैंने पीछे लास्ट मंथ ही कहीं दर्स दिया, याद नहीं का, कि बैलेंस इन लाइफ, उसका यही मैसेज था कि आज मुसलमानों को अपना बैलेंस ठीक करना है। आपको शुगर हो जाती है जब आपकी शुगर का बैलेंस खराब होता है, आप हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हैं, ये लोग हैं जब आपका बैलेंस खराब होता है। वही बारिश जब बैलेंस्ड है तो इंसानियत के फायदे किए, और वही बारिश हद से गुजरी कौमों को तबाह कर दिया। कौमे नूह पे क्या आया था? कोई सांप तो नहीं बरसे थे, बारिश ही हुई थी ना। तो लिहाजा हद से नहीं बढ़ना, और कॉपरेशन सिखाया जा रहा है। आज के दौर में एक बहुत रिवाज है, और वो क्या है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स, बड़े बड़े गैंग बने हुए, नेटवर्क है पूरा। कहते हैं क्राइम्स भी करो तो बड़े ऑर्गेनाइज्ड होके करो, और अगर आपने कोई क्राइम करना है तो हमसे रब्ता करें। वो गैंग बनकर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स फैला सकते हैं, हम ऑर्गेनाइज्ड होकर ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन क्यों नहीं फैला सकते? हम खैर के अलमदार, हम नूर रखने वाले, अल्लाह नूर समावाद से दावे करने वाले, हम क्यों नहीं जुड़ते? अल्लाह के नबी की एक हदीस का खुलासा है कि यदुल्लाह ही फौकल जमा, अल्लाह का हाथ इज्तमाइत पर है। असल काम इज्तमाइत है। ये सारी आयतें हमें ये सिखा रही हैं कि तुम देखो। फिर आप देखिए, यकाद उल बर्क यख्तफ अबसारहु, करीब है कि वही बिजली उनकी आंखें उचक ले। हर चीज के दो ही रुख होते हैं, या फायदा मंद होती है या नुकसानदेह होती है। आप और मैं अपनी सलाहियतों को पहचानें, हम चाहें तो अपनी सलाहियतों से अच्छे काम ले लें और हम चाहें तो अपनी सलाहियतों से बुरे काम लें। मिसाल देती हूँ सिर्फ एक, बाकी चीजों को आप खुद समझ लीजिएगा। आप देखिए कि गुस्सा अल्लाह ने रखा ना इंसानों के अंदर। कोई ये कहता है मुझे गुस्सा नहीं आता, ये झूठ बोलता है। वो गुस्सा आएगा, ये फितरी बात है, ये आना चाहिए। खिलाफ हक चीज को देखकर गुस्सा ना आना, ये बुजदिली और नामर्दी है, ठीक है। अब गुस्सा आपके अंदर आया, आप कहते हैं हाय मेरे में गुस्सा क्यों है, हाय गुस्से वाली बड़ी हूं, गुस्सा आ जाता है, गुस्सा गुस्सा नहीं। आप इस गुस्से को अपनी फोर्स बनाएं। कैसे फोर्स बनाएं? आप इसको गलत चीजों के ऊपर इस्तेमाल करें, नाफरमानियों को करते हुए लोगों को देखें तो अपने अंदर गुस्सा लाएं और कुछ काम करें। आप इस गुस्से को अपनी हॉर्स पावर बना लें। एनर्जी क्या होती है? गुस्सा ही तो होती है। आप देखिए कि गैसी गुब्बारा होता है ना, तो उसके अंदर गैस होती है, तो आप जरा छोड़े वो ऊपर चला जाता है। तो गुस्सा आपके अंदर है, आप उसको अंदर रखकर जोश से काम करें। आपको बेहयाई देकर गुस्सा आए, आपको सूद का निजाम देकर गुस्सा आए, आप इसी निजाम के अंदर गुस्से में कोई काम कर लीजिए, अल्लाह आपसे कराएगा। हजरत उमर फारूक ने जब पहला खुतबा दिया था अपने खलीफा बनने के बाद, उसमें यही कहा था कि लोगों आज के बाद उमर का गुस्सा और उमर की जो गैरत थी वो इंशाल्लाह नरमी में बदल जाएगी। अब वो दीन के मुतालिक इस्तेमाल होगा, और उमर का गुस्सा हमेशा दीन का था। तो बात का खुलासा ये है कि दिल बदलते रहते हैं। इंसान के अंदर हिदायत का नूर भी आता है और कभी कभी जहालत के अंधेरे भी आने लगते हैं। अल्लाह ताला कहता है कि तुम इस कायनात से अपने लिए सबक लेकर अपने आप को इंसानियत के फायदे का बनाओ, वरना याद रखो जाया हो जाओगे। फिर तीसरी मिसाल दी जा रही है रात और दिन की, आयत 44, युकल्लिबुल्लाहु लैल वन नहार, अल्लाह अदलता बदलता है रातों और दिन को। इन नफी ज़ालिका लइबरत लिउलिल अबसार, यकीनन इसमें इबरत का सामान है आंखों वालों के लिए। ये रात और दिन का आना जाना क्या? बी मॉडरेट। कभी तुम्हारा ईमान ऊपर होगा, कभी नीचे होगा, कभी कुछ होगा, कभी कैसे होगा, तुम्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत है। फिर इसके बाद आप देखिए आयत 45 में, वल्लाहु खलक कुल्ल दाबतिन मिन माइन, और अल्लाह ने बनाया हर जानदार को पानी से। अल्लाह ने कोई सोने से नहीं बनाया इंसानों को, चांदी से नहीं बनाया, पानी से बनाया। फमिनहुम मन यमशी अला बतनिही, बाज ऐसे हैं जो अपने पेट पर चलते हैं। कौन से हैं? रेप्टाइल्स, सांप और बिच्छू। टांगे वगैरह नहीं होती, पेट के बल नींगते रहते हैं। یہ ہے انسانوں کی وہ قسم جو بطن اور فرج کے گزارے کرتے ہیں. لکھ لیجئے, یہاں سے انسانوں کو اصل میں مثالیں دی جا رہی ہیں کہ جیسے جانور مختلف قسم کے ہیں نا, تو انسان بھی مختلف ہیں. جانوروں میں سب سے زیادہ موذی اور خطرناک جانور یہی ہوتے ہیں جو یمشی علی بطنہ, پوائزنس ہوتے ہیں, نقصان دہ ہوتے ہیں. انسانوں میں بھی کچھ ایسے ہیں جو صرف پیٹ کے لیے جیتے ہیں. سورت ملک میں آپ پڑھتے ہیں, افمن یمشی مکبا علی وجہہ احدا ام یمشی علی سوی علی صراط مستقیم. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا وہ جو اپنے پیٹ کے بل گرا ہوا ہے, یعنی جس کو صرف پیٹ اور فرج اور پرائیویٹ پارٹ کی فکریں لگی ہوئی ہیں, کیا وہ ہدایت پہ ہے یا جو سیدھا ہو کے چل رہا ہے؟ ٹھیک ہے, تو یہ بدترین انسان ہے. یہ بھی وہی تینوں دیکھیں گے جو ابھی تینوں پہ ہمارا ٹاپک پورا ہو رہا ہے, نور والے, کفر والے اور آگے نفاق والے. خیر دوسرے کون سے؟ فمنہم من یمشی علی بطنہ کے بعد دوسرے کون سے؟ ومنہم من یمشی علی رجلین, اور ان میں سے وہ ہیں جو دو ٹانگوں پہ چلتے ہیں. دو ٹانگوں پہ چلنے والے جانور کون سے؟ یہ مطلوب ہیں. آپ دیکھیے دو ٹانگوں پہ کون کون سے جانور چلتے ہیں, مثلا مرغی, بطخ اور کبوتر. آپ دیکھیے چڑیا, پرندے. پرندے آپ دیکھیے, پیچھے بھی پرندوں کی مثال تھی, یہاں بھی پرندوں کی بات آ رہی ہے. کیا پتہ چل رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں بتاتا ہے کہ تم جب اوپر منہ کر کے چلتے ہو, جب سیدھے چلتے ہو نا, تو تمہیں اللہ دکھتا ہے. نگاہ بلند رکھو, اوپر دیکھو. اور تیسرے کون سے؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ, اور کچھ ایسے ہیں جو چار ٹانگوں پہ چلتے ہیں. چار ٹانگوں پہ کون چلتے ہیں؟ کیٹلز, انام, ٹھیک ہے, گائے, بھینس, بکری, یہ وہ ہے. یہ وہ شخص ہے جو خواہشوں کے لیے جیتا ہے. زمین کی طرف منہ, نیچے منہ مارنا. آپ دیکھیں جانوروں میں کیٹلز دودھ تو دیتے ہیں, لیکن ان میں بہت ساری عادت اچھی نہیں ہوتی, ہر وقت جگالی کرتے رہتے ہیں. جہاں بیٹھے وہیں گندگی ڈال دی اور کھا لیا, پی لیا اور ڈکار لیا. سب سے اہم وہ ہے جو یمشی علی رجلین, اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جاؤ. کسی بڑے کام کے لیے جیو, خواہش کے لیے نہیں جینا. امام غزالی کا ایک قول ہے کہ جانوروں کی تین قسمیں ہیں. ایک وہ ہیں جو فائدہ مند ہیں نا, جو ہم سب کو فائدہ دیتے ہیں. دوسرے وہ ہیں جو فائدہ بھی نہیں دیتے, نقصان بھی نہیں دیتے. اور تیسرے وہ جو نقصان دیتے ہیں. اور تینوں آپ جانتے ہیں, خود ہی لکھ لیں مثالیں. کہتے ہیں کہ انسان اگر تو انسان نہیں بنتا, تو کم از کم جانوروں میں سے وہ جانور بن جو دوسروں کو فائدہ دیتا ہے. اور آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی مثالیں کائنات میں ہمیں کتنی ملتی ہیں. تو اللہ تعالی ہم سب کو سبق دے کے فرماتے ہیں, یخلق اللہ ما یشاء, اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالی ہر چیز پہ قادر ہے. یہاں پہ اصل میں ٹاپک پورا ہوا ہے کفر کا. ابھی تک کتنے ٹاپک کیے ہم نے اس لیسن کے؟ دو کیے, ایک مومنوں کے, اللہ نور السماوات سے لے کر آگے تک, اور پھر دوسرا کفر کی آیتوں سے یہاں تک. اب اگلی جو چند آیتیں ہمارے اس سبق میں, اور اگلا پورا کا پورا سبق, اس کے اندر بہت سارے اشارے جس گروہ کے لیے ملتے ہیں اس کو ہم منافقین کہتے ہیں. ہم نے سورت یونس سے لے کر سورت مومنون تک 14 مکی سورتوں میں منافقوں کا تذکرہ نہیں پڑا, کیونکہ مکہ میں منافق نہیں تھے, اس لیے نہ مکہ میں منافق تھے نہ نفاق تھا. مدینہ میں آنے کے بعد یہ شعبہ شروع ہوا, اور اس کا آغاز عبداللہ بن ابی سے ہوا, جس کو شوق تھا کہ مجھے لیڈر بنایا جائے, اور لوگ تیار بھی ہو گئے تھے اوس اور خزرج کے اس کو اجتماعی طور پہ لیڈر بنانے میں. لیکن اتنے میں جب اللہ کے نبی مدینہ میں آئے, تو لوگوں کو آپ کے اندر جو لیڈرشپ کوالٹیز دکھی, تو انہوں نے اس کو چھوڑ کر اللہ کے نبی کو اپنایا. یہ تھا وہ بیج جس کی وجہ سے عبداللہ بن ابی کے دل میں نفاق موجود ہوا. ایسے ہی لوگوں کا گروپ بن گیا, اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو موقع دیا. اور سورت نور آپ کو بتا کہ تقریباً 6 ہجری میں ہو رہی ہے, تو 6 سال تک کافی زیادہ منافق مدینہ کی زمین پر پیدا ہو چکے تھے. یہاں ان کا ایک کردار ہے, آیتوں کو اکٹھا پڑھیں گے انشاءاللہ, پھر اس میں سے بہت ساری باتیں تھوڑی ادھر کروں گی, اگلے سبق میں کریں گے, تاکہ ہم اس سبق کو بھی بیلنس کر سکیں. فرمائے, لقد انزلنا آیات مبینات, البتہ تحقیق ہم نے نازل کی بینات, آیتیں, کھلی آیتیں, روشن آیتیں ہم نے نازل کی ہیں. آپ کو لگتا ہے قرآن اوپن ہے, کلیئر ہے, سمجھ آتی ہیں باتیں؟ یہ تو نہیں لگتا پڑھنے کے بعد سمجھ نہیں آتا, کریں کیا, چلو برکت تو لے رہے ہیں, ایسا تو نہیں ہے الحمدللہ. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کیا سب کو یہ روشن آیتیں سمجھ آ جاتی ہیں اور ان کو سمجھ کے لوگ چل پڑتے ہیں عمل کرنے؟ نیور. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. और अल्लाह हिदायत देता है जिसको चाहता है सीधे रास्ते की तरफ। इशारा है कि खुली किताब भी हर एक नहीं पढ़ता, सीधी सी बात है। तौफीक अल्लाह से मिलती है और मिलती है उसको, जो मांगता है तो उसको मिल जाता है। जिनको तौफीक नहीं मिलती उनका हाल क्या है? आयत 47 से 50 तक में, वह यकूलूना, और वो कहते हैं कौन? वही लोग जिनके दिल नहीं खुले। आयातें बय्यिनात सुनकर, बल्कि सूरत नूर सुनकर, ये भी तो बय्यिन ही है ना, सूरत नूर सुन के जिसका दिल नहीं खुला, अब उनके उजर और बहाने। वह यकूलूना आमन्ना बिल्ला, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम ईमान लाए अल्लाह पर, वह बिर रसूली, और जुबान से रसूल पर ईमान का दावा भी करते हैं। वह अताना, और हमने इताअत कबूल की, यानी जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेते हैं, कलमा पढ़ लेते हैं। सुम्मा यतवल्ला फरीकुम मिनहुम मिन बादी जालिका, फिर इसके बाद इनमें से एक फरीक पीठ फेर जाता है। कब फेरता है? लिख लीजिए, जब अमली तकाजे सामने आते हैं दीन के। देखिए, दीन के मामले में कौलो फेल का तजाद निफाक कहलाता है, और ये नक्ज़े ईमान का सबब बनता है। ईमान चला जाता है इसकी वजह से। ईमान क्या है? अल ईमान अत तस्दीकु माल कबूली वल ईजान। ईमान है तस्दीक करना कबूल करने के साथ और सर झुकाने का नाम। सिर्फ तस्दीक काफी नहीं होती, वरना तो अबू तालिब भी मुसलमान होते। ठीक है, अबू तालिब का कॉल आता है, लकद अलिम तो इन्ना दीन मोहम्मदिन हक्कुन, मैं जानता हूं कि मोहम्मद का दीन सच है, लेकिन खानदान नहीं छूटता, इसलिए अमल नहीं कर सकता। तो ऐसे लोग अमली तौर पे मुंह फेर जाते हैं। वमा उलाइका बिल मोमिनीन, ये लोग मोमिन नहीं है, ये ईमान वाले नहीं हो सकते। अच्छा, आयत पे तो बात करेंगे। ये जो बिल मोमिनीन है ना, अगर ग्रामर की रोशनी में आप देखें ना, तो यहाँ बी मोमिनीन होना चाहिए था, अल मोमिनीन नहीं था। यहाँ लफ्ज अल होता खास, यहाँ लफ्ज था मोमिनीन, नकीरा थी। अल्लाह सुबहान तआला ने यहाँ अल मोमिनीन क्यों कर दिया? अरबी जुबान का एक असूल याद रखिए कि खबर हमेशा नकीरा होती है, कॉमन नाउन होती है। खबर दी जा रही है कि ये ईमान वाले नहीं है, तो अल्लाह ने वहां अल लगा कर क्या बता दिया कि असल ईमान इनके अंदर ही नहीं है। यानी आप कह सकते हैं कि अल मोमिनीन की जगह बी मोमिनीन है, जैसे कि सूरत बकरा में हमने पढ़ा था। क्या आती है उसमें आयत? वमिनन नासि मन यकूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरी व मा हुम बी मोमिनीन। वहां बिल्कुल सही था, बी मोमिनीन, या अल मोमिनीन करके उनको मजीद रुसवा किया गया। यानी आम तो आम, खास ईमान किसी किस्म का उनके पास नहीं है। खैर, पता कैसे चलता है कि ये मुनाफिक है? आयत 48, व इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही, जब वो बुलाए जाते हैं अल्लाह और उसके रसूल की तरफ। मुराद अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से किताब अल्लाह और सुन्नत रसूल, रसूल की तरफ। लियहकुम बैनहुम, ताकि वो इनके दरमियान फैसला कर दें। इज़ा फरीकुम मिनहुम मौरिदून, तो फिर एक गिरोह इनमें से मुंह फेरने वाला। असल में इस आयत के ऊपर दो वाक्यात जो सूरह निसा में हम पढ़ चुके हैं, याद है आपको? बिशर, तोमा बिन बिशर का, जिसने चोरी करके यहूदी पे इल्जाम लगा दिया था। और इसी तरह एक और वाक्य सूरह निसा में हमने पढ़ा था कि एक शख्स का झगड़ा था जमीन के साथ, दूसरे के साथ, और अल्लाह के नबी ने फैसला यहूदी के हक में कर भी दिया, लेकिन वह उमर के पास चला गया। बाज़ मुफस्सरीन इस आयत के साथ वो वाक्यात भी लाते हैं, कहते हैं कि यह इशारा वो है, लेकिन बात आम है, वो भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम, लेकिन आम है। अच्छा, पहली बात क्या हुई कि जब इनको अल्लाह और उसके रसूल की तरफ इंसाफ के लिए बुलाया जाता है तो मुंह फेर जाते हैं। जबकि वहीं यकुल लहुमुल हक, अगर हक इनके लिए हो, यानी फैसला इनके हक में होने की उम्मीद हो, या तू इलैहि मुज़अनीन, तो वो आते हैं रसूल की तरफ सर झुकाते हुए। मुज़अनीन नया लफ्ज़ है आपके लिए, इसको समझ लीजिएगा। मुज़इन की जमा मुज़इन। ज़ाना कहते हैं वो शख्स जो इताअत करने के लिए तैयार हो, यानी सुपर रेडी टू उबे। ठीक है, तो मुज़इनीन कौन शख्स है जो अपना सर डाल दे, जो बिल्कुल अपने आप को अल्लाह के हुक्म के आगे डाल दे। मुराद क्या है कि मुनाफिकों की आदत है कि जब दीन पर अमल करने में उनको फायदा मिलना हो, तो बड़े ही भीगी बिल्लियां बनकर, नाइस सॉफ्ट बनकर इस्लाम में आ जाते हैं, और जब उनका जरा नुकसान हो तो मोरेदून होते हैं। आप कह लीजिए कि मोरेजून के ऑपोजिट यहां मोजेनीन आ गया। अल्लाह ताला कमेंट देते हैं, अफी कुलूबिहिम मरदुन, क्या क्या इनके दिल में मरस है, बीमार है ये? क्या ये पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, सिक है ये, या फिर अमृताब? दूसरा इनका मसला शक है, ये भी लिख लें आप 1 2 3 करके आयत के ऊपर ही। चार वजूहात हैं जिस पे निफाक दिल में आता है, उसी का यहाँ तस्कर है। क्या इनके दिलों में बीमारी है, या फिर अमृताब शक है, और शक सबसे बड़ी बीमारी है, अल्लाह ना करे किसी को दीन पे शक आ जाए, वो तो ज़ाया हो जाएगा। तीसरा इनका ख्याल क्या है कि हम यखाफू नहीं यहीफ अल्लाह अलैहिम व रसूलू, या इनको अंदेशा है कि अल्लाह और इसका रसूल इनके साथ नाइंसाफी करेगा। मुनाफिक का एक ये भी रोग है कि अल्लाह और उसके दीन की बात मानकर हम दुनिया में फेल हो जाएंगे, नाकाम हो जाएंगे, हमारे रिश्ते नहीं होंगे, हम अल्लाह की बंदों की नज़रों में बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, दिस एंड दैट। अल्लाह ताला कहते हैं ये तीनों ही बातें नहीं है, बात क्या है कि बल उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, बल्कि यही लोग ज़ालिम हैं, ये झूठे लोग हैं। ऐसे लोग जो होते हैं ना, ये जुल्म की हद तक झूठे हैं। अब यहाँ पे सबक पूरा होता है। अगर आप देखें कि नूरुस समावात में मोमिन की बात थी, वल्लज़ीना कफरू में काफिर की बात थी, और ये जो आखिरी हिस्सा इसमें निफाक की बात है। थोड़ा सा इसको समझें, इसकी ज़्यादा डिटेल्स अगले सबक में आएंगी इंशाल्लाह, यहाँ इशारा है लेकिन बात आगे जा रही है। आप देखिए कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको ईमान के अमली तकाजे ही ईमान वाला बनने नहीं देते। आप आज किसी भी नॉन मुस्लिम के पास जाएं, मुश्किल में, परेशान है, बीमार है, दुखी है, कोई मसला है, आप उसे कहें तुम्हें एक वजीफा बताऊं, ये तस्बीह पकड़ो, वजीफा लिख के दे देती हूँ अपनी जुबान में, तुम्हारी जुबान में, हिंदी इंग्लिश अरबी सब में लिख दें। वजीफा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये जुमला तुमने 1,25,000 बार पढ़ना है तो तुम्हारा ये मर्ज़ दूर हो जाएगा, तुम्हारा ये मसला हल हो जाएगा। आपका क्या ख्याल है इनका क्या रद्द अमल होगा? वो उतनी ही खुशी से ये करने पे तैयार हो जाएंगे जैसे मजबूरी जब आती है, तकलीफ आती है, तो हम नॉन मुस्लिमों से जाके इलाज भी कराते हैं, दवाइयाँ भी खाते हैं। जैसे जिसकी मुसीबत होती है वो उसका तोड़ करता है, लेकिन जब एक दफा इस ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझा कर उस पर अमल कराएंगे तो मोरी दून। तो बताइए कि उसमें और फिर मुसलमान में क्या फ़र्क है? वो बंदा जो अपने आप को इतात के वक्त पीछे कर ले, क्या आप उसको अपना बंदा कहेंगे? ये नहीं हो सकता। इस रवैये पे हम अपने अगले सबक में बात करेंगे, और मैं आपको इंशाल्लाह अगले सबक के खुलासे में कुछ चीज़ें निफाक की लिखाऊंगी। जैसे हमने इस सबक में ईमान के दर्जे और सिद्दीकीन और महजूबीन और मखदूमीन का पढ़ा, इंशाल्लाह अगले सबक में हम काफ़ी चीज़ें निफाक की पढ़ेंगे। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमारे दिलों से निफाक को दूर कर दें। सुभानकल्लाहुम्मा वबिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका वअतूबु इलैक।